पिछले अध्याय में आपने देखा कि जय और रूही की दोस्ती हुई और देवांश ने वीनू पर हमला किया। इस अध्याय में देवांश वीनू को मार डालता है और मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। वहीं रुद्र एक डील के लिए मिस्टर बेहरा के साथ है, जो मना कर देता है। रुद्र मिस्टर बेहरा को धमकाता है, लेकिन वो फिर भी जमीन देने से इनकार कर देता है। रुद्र एक डील के लिए मिस्टर बेहरा के साथ है, जो मना कर देता है। रुद्र मिस्टर बेहरा को धमकाता है, लेकिन वो फिर भी जमीन देने से इनकार कर देता है। अब आगे चैप्टर 130। अब आगे रुद्र अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए अपने गन को निकालता है और अपने हाथों की उंगलियों में फंसा उसे राउंड राउंड घुमाने लगता है, जिसे देख एक पल के लिए मिस्टर बेहरा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने डर को छुपाते हुए रुद्र से बोले, मिस्टर सिंघानिया, आपको क्या लगता है कि आप इस गन से मुझे डराएंगे और मैं डरकर साइन कर दूंगा? तो मिस्टर सिंघानिया, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस पेपर पर कभी साइन नहीं करूंगा, चाहे आप उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना ले ले। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मरने के बाद भी ये जमीन मेरे नाम ही रहेगी, आपकी कभी भी नहीं हो पाएगी। मिस्टर बेहरा की बात सुनकर रुद्र अपने चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल लिए अपने रौबदार आवाज में मिस्टर बेहरा को देख बोला, मिस्टर बेहरा, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे रुद्र सिंघानिया पाना चाहे और पाना सके। अगर रुद्र सिंघानिया के मकसद के बीच कोई आता है, तो वे इंसान या वे चीज दोनों को रुद्र सिंघानिया मिटाने की हिम्मत रखता है। रही बात इस जमीन की, तो आप ये जमीन खुद और अभी इसी वक्त मेरी आंखों के सामने साइन करेंगे, वे भी अपनी मर्जी से। इतना बोल वे अमन को कुछ इशारा करता है, जिसे देख अमन अपना फोन निकाल अपने फोन में एक वीडियो प्ले कर मिस्टर बेहरा के सामने कर देता है, जिसे देख मिस्टर बेहरा की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वे रुद्र को देखते हुए बोले, मिस्टर सिंघानिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इन सब में मेरी बेटी को कैसे ला सकते हैं? वे अभी बहुत छोटी है, उसे छोड़ दीजिए। उस वीडियो में मिस्टर बेहरा की बेटी एक चेयर से बंधी हुई थी और उसके आसपास रुद्र के आदमी अपने गन ताने खड़े हुए थे। वहीं रुद्र मिस्टर बेहरा की बात सुनकर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ एक मिनट है। अगर इस एक मिनट में तुमने इस पेपर पर साइन नहीं किया, तो तुम्हारी बेटी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देगी। और तुम्हें तो पता ही है कि रुद्र सिंघानिया अपनी बात से कभी भी नहीं मुकरता। वे जो कहता है वे करके रहता है। अब आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी जमीन चाहिए या अपनी बेटी। इतना बोल रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसे देख मिस्टर बेहरा अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, मिस्टर सिंघानिया, आज आप मुझे मजबूर कर ये पेपर साइन करवा ले रहे हैं, मगर मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा कि जिस तरह आप मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे मजबूर कर रहे हैं, कहीं एक दिन आप भी इसी तरह मजबूर ना हो जाएं। कहीं एक दिन आपके दिल से जो बेहद करीब हो, वे आपके दूर ना चला जाए और आप चाहकर भी कुछ ना कर पाएं। इतना बोल वे उस पेपर पर साइन कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहीं मिस्टर बेहरा की बात सुनकर रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वे टेबल पर रखे फाइल को जमीन पर फेंकते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी कभी कोई कमजोरी नहीं होगी, और रही बात मेरी रूह की, तो मैं उसे अपने पास इस कदर कैद करके रखूंगा कि वे कभी भी अपने दिमाग में मुझसे दूर जाने का ख्याल भी नहीं लाएगी। वे हमेशा इसी तरह मेरे पास मेरी बनकर रहे भी। ये सब कहते हुए रुद्र की आंखों में रूही के लिए एक जुनून, एक पागलपन और एक दीवानापन साफ साफ नजर आ रहा था, जो ये बताने के लिए काफी था कि रुद्र रूही को अपने पास रखने के लिए सारी हदें पार कर सकता है, लेकिन कभी उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ अनाथाश्रम में दिशा जब से इंदौर से वापस आई है, तब से अपने कमरे में ही है, क्योंकि देवांश ने जो उसके साथ उस रात को किया, वे उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि देवांश उसके साथ कभी ऐसा कुछ भी करेगा या उसके मन में उसके लिए इस तरह की भी कोई फीलिंग होगी। वे देवांश के रिएक्शन से पूरी तरह से शॉक थी। उसने यहाँ आने के बाद अपने शरीर को न जाने कितनी बार साफ किया, मगर इतना साफ करने के बाद भी उसे अपने शरीर में अब भी देवांश का टच महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि देवांश ने उसे इतनी तेजी या इतना अग्रेसिव होकर किस किया था कि उसके होंठ अब भी सूझे हुए थे। साथ ही साथ उसे अपने होंठों में दर्द भी महसूस हो रहा था। दिशा जब से इंदौर से आई कि उसकी आंखों से आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रो रोकर उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वे मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोले, क्यों सर, क्यों, क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? अगर मुझे पता होता कि आप मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं, तो मैं कभी भी आपके साथ काम नहीं करती। मैं आपके ऑफिस में काम करने इसलिए आई थी ताकि मैं सेफ रह सकूं, सबकी गंदी नजरों से दूर रह सकूं, क्योंकि मैंने सुना था कि आप अपने ऑफिस में लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखते हैं, और आपको एम्प्लॉय भी इसी तरह के चाहिए जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते। मैंने तो लोगों से ये भी सुना था कि अगर गलती से कोई लड़की आपको बहकाने की या आपके करीब आने की कोशिश भी करती थी तो आप उसे ऐसी सजा देते थे जिसके वे लड़की दोबारा किसी के करीब जाने के बारे में भी ना सोच सके। ये सब जानने के बाद ही मैंने आपका ऑफिस ज्वाइन किया था, लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि जिस देवांश सिंघानिया के बारे में लोग इस कदर बातें करते हैं उस देवांश सिंघानिया का एक अलग ही चेहरा है। उसकी नीयत इतनी बेकार है कि उन्होंने मेरे साथ ये सब करने के पहले ये भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मैं ये सब चाहती हूँ भी या नहीं। बस उनका जो मन किया उन्होंने मेरे साथ वे सब किया, लेकिन अब मेरा जो मन करेगा मैं वे करूंगी। इतना बोल वे अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अब मैंने सोच लिया है, अब मैं उस जगह पर बिल्कुल काम नहीं करूंगी जहां पर मेरे बॉस मेरे बारे में इस तरह की सोच रखते हों। मैं अभी के अभी वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन लेटर देकर आऊंगी। अब मैं वहां काम करना तो दूर, आपका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करूंगी। सर आप एक बार तो मेरे करीब आ गए, लेकिन दोबारा मैं आपको अपने करीब कभी भी नहीं आने दूंगी।
इतना बोल वे अपने आंसुओं को पोंछ फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर में फ्रेश हो एक सिंपल का सूट पहन वे बाहर आती है, और जैसे ही वे अपने बालों में कंघी कर अपने चेहरे को देखती हैं, उसके चेहरे पर दोबारा गुस्सा झलकने लगता है, क्योंकि रोने की वजह से उसकी आंखें काफी सूज गई थीं। साथ ही साथ उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस चीज को देखकर आ रहा था कि इतना खुद को साफ करने के बाद भी उसे अपने होठों पर और गले पर अब भी देवांश के दांतों के निशान साफ साफ दिख रहे थे, जिसे देख दिशा गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती है, क्योंकि इसके ज्यादा वे अभी कुछ कर भी नहीं सकती थी।